एक पिक्चर आप भी बना सकते हैं जहन में, एक घड़ा है और कोई उसमें गिर रहा है, लेकिन एक कोई फोर्स है जो उसको उसमें गिरा रही है, जैसे कभी सकर होते हैं ना सकर, ये दुनिया और जहन्नुम का घड़ा इज अ सकर, ऐसे वैक्यूम करता है और एक बंदा वहां बैठा बचा रहा है। हम सबका जिंदगी में भी ये हाल है। आप ट्रेडमिल पे खड़े होते हैं, कैसे चलता है उसका पहिया, और अगर वो पहिया चल रहा है और अगर आप मूवमेंट ना करें या आप जरा पीछे हो तो आपको पीछे पड़खा के मारेगा। इस दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको मुजाहिदा बना दिया है ना, डोंट लीव योर प्लेस, यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क। चलिए अगर अल्लाह ना करे कोई वक्त, अगर कभी ना करे, यकीन करें, बहुत दुआ किया करें, ये पत्ते लगे या पत्ते झड़े जो भी है, लेकिन आपकी जड़ें जमीन में ही रहें और आप लिख के रख लें, जब जड़ कट जाती है ना दरख्त की तो फिर एल्फी से भी दोबारा वो पत्ते जोड़ेंगे ना, कभी बाहर नहीं आएगी। टूटा हुआ सेब आप जाकर एल्फी के साथ क्या रस्सियों के साथ जोड़ दीजिए, कभी वो डंडी वाला मामला नहीं होगा। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और ये जो मुजाहिदाना काम है ये लिख ले अभी से, ये इंडिविजुअल नहीं होता, ये टीम वर्क है। ये वो काम है जिसके लिए आपको पूरे माहौल, पूरे एटमॉस्फेयर और पूरे एक कह लीजिए ग्रुप की जरूरत होती है। आप अंगूर लाते ही होंगे घरों में, आप देखिए जो अंगूर के गुच्छे टहनियों समेत होते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं, और वो अंगूर जो गिर जाते हैं टूटे होते हैं, वो अगले दिन उनके मुंह काले होने शुरू हो जाते हैं। मुश्किल बड़ा लगता है कि हम इस गुच्छे से चिपके रहे, लो कोई आइडेंटिटी नहीं मारी, लेकिन डंडी के साथ फ्रूट खरीदे। कई अक्लमंद लोग हैं ना, वो डंडियां साथ खरीदते, तुलती हैं बीच में, पर उनको पता है कि डंडी का वजन तो हम पे कर रहे हैं लेकिन इसकी वजह से ये फ्रूट फ्रेश रहेगा। केले का भी यही हिसाब है, जो डंडी से टूटा वो काला हुआ। मुजाहिदीन होने का तसव्वुर अकेले नहीं, अकेला बंदा कभी मुजाहिद नहीं बन सकता, और इसके पीछे फिर एक सुपरविजन होती है, एक लीडर होता है। आज इसीलिए तो हम बड़े मुसलमान कई चीज़ों में माजूर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वर्ल्ड लीडर नहीं जो जिहाद को डिक्लेयर करे। तो जो वक्त का मुसलमान हुक्मरान होता है ना, वो डिक्लेयर करता है, वो कहता है इधर जाओ इधर ना जाओ, ये करो वो ना करो, वो तो चाहता करे, लेकिन एक मैनेजमेंट के अंडर होता है ना। तो मुजाहिदीन बना, इसको आप आयत नंबर 4 में देखेंगे इंशाल्लाह, जिस दिन आयत 4 हम करेंगे ना, फिर आपको ये मुजाहिदीन का लफ्ज़ दोबारा याद आएगा, बल्कि पूरी सूरत में ही आएगा। अभी हम आगे चलते हैं। जिहाद छोड़ दिया आपने, काम छोड़ दिया, मैं आपको दो तीन लोगों के नाम दे सकती हूँ, जिसको शौक है ना कोई काम छोड़ने का, वो मेरे से उनके नाम ले ले, इजाजत लेके ही दूंगी आपको नाम, और उनसे जरा फोन करके पूछिएगा कि जिस उन्होंने ये जिद्दोजहद छोड़ी तो क्या बना, पीछे सिर्फ इखलास रह जाता है। फिर बंदा मुखलिस तो होता है, मुखलिसीन में नाम है, और मुखलिस कौन से होते हैं कि जिनसे कभी गलती होती है, खाते भी नबी बलता सुना ना, और मुखलिस बनने के लिए बस एक ही गलती काफी है कि आप मुजाहिदा होना छोड़ दें, फिर वो कहीं भी नहीं रहते। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, जब आप एक जिद्दोजहद छोड़ते हैं, आप कहते हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं, या मेरे माइंड के लोग नहीं है, मुझे नहीं ये माहौल अच्छा लगा, नहीं या बहुत सख्ती है, या टू मच पूछते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं तो जुड़ना ही पड़ना है। अब जब दूसरी जगह आप जुड़ेंगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ एक दुनियावी मिसाल देती हूँ ताकि एब्जॉर्व करना आसान हो। एक लड़की की शादी होती है, अब शादी से पहले तो हमें लगता है ससुराल वालों को कि हमें हूर परी मिल गई और दुनिया की बेहतरीन लड़की हमारे लड़के के लिए आ गई, और कुछ ऐसी ही फीलिंग्स लड़की वालों को भी होती हैं कि लड़का बड़ा अच्छा तो माँ तो है ही बड़ी प्यारी और लाड़ बड़े देखती। लड़की शादी होके गई, अब वहां जाकर पता चला कि दूर के ढोल सुहाने, दोनों को पता लग जाता है, वो दोनों की आंखों पे पड़े हुए वो जो पर्दे थे वो हटते हैं, रियलिटी बेस्ड होता है ना बंदा। फिल्मों में ना तो वहां सास होती है पास, ना लड़की ही वो इनकी तरह खूबसूरत होती है, आम जिंदगी जिंदगी होती है। चार मौसम तो आपके एक साल में आते हैं, तो शादीशुदा जिंदगी में तो 40 मौसम आएंगे, फिर आप निभेंगे, फिर पलेंगे, फिर आपका घर बसेगा। अब जरा गर्मी आई, आप कहते हैं मैं नहीं रह सकती इस घर में, बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी है, हर वक्त लड़ाई। आप दूसरी सोचिए ना जो हालात की गर्मी है, खुश्की आ गई, मियाँ ने पैसे ना दिए, आप कहते नहीं ऑटम आ गए मैं तो नहीं रहती, तो फिर आप बाहर नहीं देख सकेंगी। अब इसको मिसाल लीजिए, अब एक कुंवारी बच्ची जब शादी हुई उसको ससुराल मिला, माँ बाप ने भी पूरी कोशिश की कि दी बेस्ट चॉइस मिले, तो उन्होंने भी करी, उसके बाद उसको वो मिला जो आज जो से निभ नहीं रहा। वो लड़की कहती है मैं नहीं रहती, वापस आ जाओ। लड़की वाले कहते हैं लो हमें इसकी दो रोटियां बुरी हैं, हम पाल लेंगे। भाई कहते हैं खबरदार कोई ज़रूरत नहीं इधर रहने की, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। भाई भी ले आएंगे, बाप भी ले आएगा, सिर्फ दिल में गुस्सा आ रहा होगा तो भाभीियों को आ रहा होगा कि ये अब एक आ रही है, और अगर अल्लाह ना करे साथ कोई एक आधा बच्चा भी आ गया तो फिर तो अल्लाह की बना, फिर देखिए अब क्या होता है। अब वो आ गई, आप सारे मुजाहिदों से गुजर गए, अलग हुए, सेपरेशन हुई, फिर तलाक हुई, फिर इद्दत हुई, फिर उधर से सामान वापस आया, आपने भी ताने दिए, उन्होंने इल्ज़ाम दिए, उन्होंने कहा हमारा जेवर दो, कहते हम हक मेहर नहीं दें, वो जो हमारे दुनियादारी के जिहाद है एक साल में निभ गए, व्हाट नेक्स्ट। अब इसके लिए ज़रा कोई रिश्ता ढूंढे, अच्छा शादी करनी है, बच्चा भी है साथ। मुझे बताइए आप, वो लड़की जब किसी दूसरे घर में जाएगी तो क्या वहाँ कोई ऑटम और कोई खिजां और बहार नहीं आएगी? हर जगह मसले होते हैं, फर्क यह है कि जाके पता लगते हैं, कुछ अपनों के पहले पता होते हैं, गैरों के जाके पता लगते हैं। दीन का काम भी ऐसे ही होता है। आपका नसीब था ना कि आप अपने लास्ट नेम को जहन में लाइए, आपके वालिद का जो भी नाम था, आपने उसी शख्स के घर में पैदा होना था, और आपकी माँ का नाम लिखिए, आपकी माँ वही औरत बनी थी, ये अल्लाह का फैसला था, दैट वॉज योर नसीब। और सब्बा हमें याद रखिए, जिधर जिसको अल्लाह ने पैदा कर दिया वो खुश है। हम अपनी माँ नहीं बदलना चाहते कभी भी, चाहे गोरी है, काली है, बाखलाक है, जो भी है, कोई बच्चा अपनी माँ नहीं बदलना चाहता। और आज ये अलग बात है कि बच्चे चाहें तो बदलें, आज तो ये भी जरूरतें आ गई, उनको तो दोस्त की माँ अच्छी लगती है, अपनी कैसे अच्छी लगेगी जो हर बात पर टोकती है। इसी तरह हम शरीफ खवातीन, एशियन खवातीन अपना शौहर भी नहीं बदलना चाहती, भाई यही नसीब में था, अब्बा अम्मा की चॉइस थी, अल्लाह ने ये दे दिया, अब जो भी है गुजारा कर रहे, क्यों घर निभ रहे अभी तक? 80-90% फैमिलीज, मुस्लिम फैमिलीज के घर क्यों निभे हुए हैं? कि यही था नसीब में। जिस तरह दुनिया का नसीब बंदा चूज कर लेना, इस तरह जब आप अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद में है ना, तो जो चीज़ आपके नसीब में है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो आपके पास है, जो अवेलेबल है, जो आपकी पहुंच में है, आप वहां जिद्दोजहद करेंगे या आप मक्का जाकर कोई दीन का काम करेंगे? मैं आप कहती हूँ जी मैंने नहीं अटलांटा में पढ़ाना, मुझे तो मक्का में जाकर पढ़ाना है, मुझे मक्का में एक स्कूल बनाना है, तो ना मक्का में स्कूल बना तो ना मैं मुजाहिदा बनी, तो मुझे अटलांटा में ही ये काम कर लेना चाहिए। शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है, मैं यहां नहीं वहां, जब वहां जाएंगे तो वहां कर लीजिएगा, अभी आप यहां हैं, बात समझ रहे हैं? तो मुजाहिदा से मुखलिसा बनने के बीच में सिर्फ एक गलत फैसला होता है, जैसे हातिब से एक गलती हुई ना, कोई एक रॉन्ग डिसीजन आपको दीन की जिद्दोजहद से निकाल के, आप कहते नहीं अब मैं घर रहकर अपने बच्चों को टाइम दूंगी, दे के देखिए, ये तो जो आप 4 घंटे बाहर जाते थे ना, तो बच्चों के दिल में कोई इज्जत कदर थी, जब आप 24 घंटे उनके सर पे सवार होंगे ना, और वो कोरोना में देख लिया आपने, मियाँ बीवी की तो तलाकें हुई, बच्चे तलाक नहीं दे सकते, वो घर ही छोड़ गए, कहते हैं आई कैंट स्टे विद माई मॉम मोर देन दिस, जब अब्बा अम्मा सो जाएंगे ना मैं फिर घर जाऊंगा, दैट इज जुबान हाली से बच्चों की आज की टोन। वो आपको फेस नहीं करना चाहते, पता है आपको, वो कहते हैं ये बुढ़ी बुढ़ा सोए थक के, मेरी माँ रास्ता देखते देखते इसकी आंखें थक जाए, जब ये सो जाएगी ना फिर चुपके से जाऊंगा और जाके सो जाऊंगा, और ये सुबह जाएगी तो उठूंगा, वो उठे होते हैं अंदर, वो नहीं जाते बाहर, क्यों? आप जाए, दे डोंट वॉन्ट टू फेस यू। और यही हाल मियाँ बीवी में, जब नहीं बनती, एक रिपोर्ट थी, मर्दों ने कहा कि हम जान के घर देर जाते हैं, जब बीवी सोएगी तो जाएंगे, ताकि इसकी चकचक ना सुननी पड़े। तो बात समझ गए हम सब, अब क्या हुआ, आप मुखलिस तो बड़े हैं, आप घर बैठे हैं, मुजाहिदा खत्म, आपकी एनर्जी खत्म, लिख के रख लीजिए ये सारी एनर्जी जिद्दोजहद की है। आपको साइंस ने इसको कह दिया, फ्रिक्शन जब होती है तो एनर्जी पैदा होती है, सबको ही पता है। जितना आप दीन के रास्ते में या किसी भी रास्ते में जिद्दोजहद करेंगे ना, आपके अंदर उतनी एनर्जी आएगी। आज इसको छोड़िए, सिर्फ पीछे आप मुखलिस ही रह जाएंगे, ये अखलास भी कोई नहीं काम आना कल, अगर आगे जाकर उसको कहीं कैश नहीं करा। आपके पास $1,000 पड़ा है घर में, पर्स में, बैंक में, क्या फायदा अगर आप दवा नहीं ले रहे उससे और आप मर गए, पानी नहीं ले रहे, खाना नहीं ले रहे, मजबूरी थी, आपकी जान पे बनी थी, आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, तो वो आपके जो बैंक के पैसे हैं वो आपकी कब्र पे तो नहीं कोई डालेगा ना, तो वो इखलास के दावे ही हैं सिर्फ लोगों के पीछे। चलिए अब क्या हुआ, दी बेस्ट फेस से निकले तो दी बेटर में आ गए, बड़ा मान है लोगों का, मुखलिस है। और मैं सिर्फ इसका भी एक एंगल दे रही हूँ, मैं उसकी तो बात ही नहीं है, तो मैं छोड़ने की बात कर रही हूँ ना, बहुत सारे लोग मुजाहिदीन होते हैं, काम ठीक नहीं करते, उनको भी तरक्की नहीं मिलती। दो चीजें लिख लें, अगर आपने मुजाहिदीन में शामिल होना है ना, तो दो काम लिख लें अपने लिए, एक तो इखलास और एक सुन्नत तरीका, तरीका भी ठीक हो, आज दीन के पौधे पे अक्सर लोगों के बहार क्यों नहीं आती? नंबर एक, इखलास नहीं है। तो जहाँ इखलास नहीं वहाँ पनपना नहीं। इमाम मालिक का जुमला याद कर लीजिए, मा कान लिल्लाह ही बकिया, जो अल्लाह के लिए काम होगा वही बचेगा। उन्हीं चीज़ों में बरकत होती है जो लोग इखलास से देते हैं। कई दफ़ा कोई एक चीज़ देता है, 10 साल तक वही पड़ी रहती है आपके पास, काम आ रही है, और कभी कोई इधर कोई डोनेशन आई, कल टूट गई, आपको पता ही नहीं वो क्यों टूटी है, ये उसका अल्लाह का मामला है। आपको कोई चीज़ देता है, आपके काम में नहीं आती, वो आगे निकल गई, और जो चीज़ आपको पसंद आ गई 10 साल तक वो आपके इस्तेमाल में रहती है। तो ये इखलास के साथ एक बका है, और दूसरी बका क्या है कि नबी के तरीके से कैसा था। 90% मुजाहिदीन, आज के दौर की बात करती हूँ, पिछले दौर की बात नहीं करती, वो हैं मुजाहिदीन। कोशिशें बड़ी, मेहनतें बड़ी, लाखों डॉलर्स आप लोगों का लगवाते हैं, फिर मस्जिदें बनती हैं, फिर इदारे बनते हैं, लेकिन आप काम नहीं ठीक कर रहे तो बाहर नहीं आती। माली बीज भी डाले, पानी भी दे, गोडी भी करे, लेकिन गलत मौसम में बीज डाल दे, गलत मौसम में जाकर उसकी गोडी बाड़ी शुरू कर दे, तो क्या वो पौधा पनपेगा? तो बड़े खुशकिस्मत हैं आप अगर आपको कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा और ऐसा माली मिल जाए जो आपको गाइड कर रहा है कि आपकी कोशिशें इधर लगेंगी तो इसको बाहर आएगी। फिर हम टबक टोइयां मारते हैं, फिर हम जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, फिर उससे पूछ कुछ, उससे पूछ कुछ, उधर से ले कुछ, उधर से ले कुछ करके फिर एक बुत सा बना देते हैं दीन के नाम पे। तो इखलास ही इखलास है। मैं ऐसे 90% लोगों को जानती हूँ, बड़े मुखलिस हैं, लेकिन इंतहाई नाकाम, इंतहाई गलत तरीका है दीन का काम करने का। तो गलत तरीके का मतलब ये कि रिजल्ट्स नहीं है। किधर है आज रिजल्ट्स? कितने को रिजल्ट्स हैं आज हमारे पास? हमें कोई जज करने का, किसी को फैसला करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन अपनी इसलाह के लिए तो हम सीख सकते हैं ना। आज मार्केटिंग की दुनिया में लोग हजारों डॉलर महीने के देकर लोगों को स्पेशलाइज को रखते हैं कि हमारी इस फर्म पे नजर रखो, कौन सही काम कर रहे हैं, नहीं, हम किधर ठीक जा रहे हैं, हमारा लॉस कितना है, हम प्रॉफिट में कैसे जाएं। तो अगर आप मुजाहिदा नहीं रहेंगे ना तो मुखलिसा बन जाएंगी, आगे क्या होगा? जिद्दोजहद खत्म। तो इखलास का अगला स्टेप क्या है? आपका ईमान कमजोर हो जाएगा। 5 वक्त की मस्जिद की नमाज मर्द को अगर 27 नमाजों का अजर तो देती है ना, तो साथ ही साथ उसको फिर अगली नमाज में आने की एनर्जी भी देती है, फिर उसको तहज्जुद की एनर्जी देती है, फिर वो उसको कह लीजिए इशराक की नमाज की भी ताकत देती है, और जो 5 फर्ज छोड़ देगा वो कहाँ पड़ेगा? बात समझ गए? वन नेकी लीड्स टू अदर नेकी। इसी तरह आप जितना दीन का काम करते जाते हैं उतने एनर्जेटिक, उतने चार्ज्ड, उतने रिलैक्स। और यहां मुझे इजाजत दीजिए बोलने की, ये आप पिछले 5 साल में मैंने अपने ही सारे इलाकों में भी देखा है, हमारे अपने नूरुल कुरान में भी यही है। हफ्ते में बस 2 दिन का कोर्स रखें, ज्यादा लोग आएंगे, इजी होगा। चले हफ्ते में 1 दिन तो ठीक है, बहुत ही कम है, 8 साल लग जाते हैं, 2 दिन का कोर्स ठीक है। मैं आप में से किसी को नहीं कह रही, प्लीज अपने ऊपर ना लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड अब दुनिया का ट्रेंड हुआ है, लोग आज दिन ब दिन नाजुक मिजाज होते जा रहे हैं, दुनिया बढ़ती जा रही है। वो ऐसी ना जैसे आपके बैग में चीजें और बढ़ती जाएं तो फिर आप अहम चीजें निकालते जाते हैं, नहीं अब मैंने ये तो जरूर लेना, किताबें निकाल दो। हमारे इस दुनिया के बैग में दुनिया इतनी बढ़ती जा रही है कि दीन का टाइम ही नहीं, हमारी नमाजें कहाँ रह गई? फर्जों पर तो हम सिर्फ आगे हैं, सुन्नत और नफिल और उसके एक्स्ट्रास तो दूर की बात है ना। तो जितना आप कहते नहीं 2 दिन, अच्छा फिर कुरान से, अच्छा बस 3 दिन, अच्छा बस हफ्ते में कोई 1 दिन का दर्स रखिए, नहीं वंस अ मंथ ठीक है, आप 1 दिन महीने में कोई क्लास शुरू करेंगे ना, इंतहाई मुश्किल है आपके लिए। एक मिस हुई तो 2 माह पे चले गए, तो वो जो ग्रिप पीछे से लूज हुई तो आपका ईमान लूज हो जाएगा। रोज आना आसान है, ज्यादा दिन काम करना आसान है, कम दिन करना मुश्किल है। मुझसे पूछिए कैसे? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के पास काम करने के लिए खिदमत गुजार मौजूद है। मासी आती है, रोज सफाई कर जाती है, और कभी एक दिन मासी ना आए, और आपको पता है कि मट्टी है, बच्चों वाला घर है, सफाई तो करनी होती है ना। मैंने अपने प्यारों को देखा, जब कभी जाए मासी ने, सुबह उठते ही वो मासी की गिफ्तें शुरू हो जाते हैं, आज आई नहीं। अक्सर घरों का नाश्ते की वो चाय की टेबल के दौरान टॉक मासी होती है, उसको डिस्कस करते हैं, है ही ऐसी, कल ही पैसे लेके गई, झूठ बोलती हैं, वो उधर गई, गांव चली गई, आई नहीं, पता नहीं। खैर, वो मासी नहीं आती ना, वो एक दिन आपको ये इतनी जगह की सफाई करनी पड़ जाए तो क्या होता है? कमर दुखती है। और बाहर की दुनिया में हम खुद करते हैं, आपका तो मुझे नहीं पता, अमेरिका वालों का, नॉर्वे में किसी के पास 9 मासी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप किसी से इस बात की तस्दीक कर लीजिए, एक मासी हमारे स्कूल में नहीं है। एक दफा आई थी शीशे साफ करने, आधे शीशे करके चली गई, 700 क्रोन दिए इन्होंने उसको, खुद दिए स्टाफ ने, 100-100 डाल के दिखा, खुद नहीं करते इनसे कराते हैं, शुरू में शौक था, अच्छा स्कूल साफ करा, तो सफाई कोई मासी नहीं है हमारे पास, ये खुद करते हैं। तो ये जो मुजाहदे होते हैं ना, ये आपको जिमा के रखते हैं, ये आपको कितनी दुनिया की चीजों से बचाता है ये आपको नहीं होता। यानी ईमान ही नहीं कमजोर होता मुखलसीन के बाद, जिस्म भी कमजोर हो जाता है। एक दायरे से जब आप उठते हैं ना, तो फिर आप दूसरे में जाने के, और दूसरे से तीसरे में, और जब आप मुखलसीन से उठेंगे तो किधर जाएंगे? कमजोर ईमान। और अल्लाह ना करे कमजोर ईमान वाले जरा सी स्ट्रगल छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे? और मुनाफिक पीछे किधर जाएगा? वो डॉटेड दायरा जो मैंने इसमें नहीं बनाया, इन्नल मुनाफिकी नफे दर की असफली मिनन नार, सूरत निसा में छठे पारे की आखिरी आयते हैं कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। और उससे पहले क्या आयत है, किसी को याद है? इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, बेशक अल्लाह जमा करने वाले मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में। तो निफाक लीड्स टू कुफर, फिर आप आउट हो गए, इस्लाम की बिल्डिंग, इस्लाम के सेल, इससे आप निकल चुके हैं। इतनी बात जिसको समझ आ गई है, उसको अपने ईमान की फिक्र लग जानी चाहिए, परेशान होने की जरूरत है। तो ये सायत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहां इस कोर में से लिखिए, ये थर्ड कोर कमजोर ईमान वालों को पुकारा जा रहा है कि तुम किधर चल पड़े हो। ये ना तो अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, किसी और को नहीं था, बल्कि उन ईमान वालों में से कमजोर ईमान वालों को जो गज़वे ओहद की शिकस्त या भगदड़ के बाद वो डिमोटिवेटेड हो गए थे। यहां उनकी बात थी कि तुम किधर चल पड़े, तुम्हें तो जरा भी अपने आप को संभालना है। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ये भी नोट करें जरा, लफ्ज़ी वज़ाहत देखिए, साथ साथ चलते हैं। या अय्युहा, ए लोगो, अल्लज़ीना, जो आमनू ईमान लाए हो। आप ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुनते हैं अल्लाह ताला का कलाम का हुसन, के अब मुझे आपको तो आज पता लग गया कि यहाँ ये थर्ड कोर वाले कमज़ोर ईमान वालों को पुकारा है, लेकिन इज्जत बनी हुई है, जैसे आज हम मुसलमानों की इज्जत बनी हुई है नाम इस्लाम के साथ। अब ये रास आती है कि नहीं आती, ये हमें नहीं पता। तो लफ्ज़ आमनू को देखिए, आमन यूमिनो, अमन है असल में, अमन और पीस है इस्लाम। अमनुन, अमानतुन और अमानुन, ये सब असल में लफ्ज़ अमन के बच्चे हैं। कभी हालत अमन होती है, कभी ये लफ्ज़ अमानत बन जाता है। आप देखिए कि हर इंसान के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कौन हूं, मैं किधर से आया हूं, मैं क्यों आया हूं और मैं किधर जाऊंगा, ये पांच सवाल लिख लें। काफिर को, एथियस्ट को, एग्नोस्टिक को, इन सवालों के जवाब नहीं पता होते। आप किसी नॉन मुस्लिम सिस्टर से रस्तों में, गाड़ियों में, इधर उधर बात करके जरा सी बात छेड़ के पूछे ना, दो चार सवालों के बाद आप उससे पूछे, वट डू यू थिंक, वट विल बी गोइंग टू हैपन आफ्टर आवर डेथ? ओ आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज, वट डू यू थिंक अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ? नो नो, नथिंग। ओके, वट विल हैपन देन? आई डोंट नो। बहुत ही ज्यादा वो ऐसे होंगे, कमजोर होंगे, अपने आप को इस तरह महसूस करेंगे कि जैसे हम डाउट्स में। तो लिखिए, कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला फायदा क्या होता है? अमन आता है। वही कोर अब आपके जहन में सारी जिंदगी चलना चाहिए, जिस दर्जे का ईमान उस दर्जे का अमन, पीस, इस्लाम इज अ पीस। आज ला अदरियत का गलबा है। ला अदरियत किसको कहते हैं? एग्नोस्टिज्म। आप कहते हैं ना, एक एथियस्ट है ना, तो एक एग्नोस्टिक्स है, वो क्या कहते हैं? नो पर्पज ऑफ लाइफ, मैं क्यों, कहां पता नहीं, किधर जाना पता नहीं, बंदरों से हुए ठीक है, डार्विनिज्म था पता नहीं, ये है वो है। तो आज अक्सरियत मुसलमानों की बेअमल है। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान के साथ अमन है। अल्लाह ने इस लफ्ज को अमानत के तौर पे सूरत अल-अहज़ाब के एंड पे भी कहा, इन्ना औरतनल अमानत अल समावाती वलर्द। इसकी डिटेल्स आप फिर कभी नोट करें, मैं सिर्फ लफ्ज ईमान पे आपको देना चाहती हूँ थोड़ी सी बातें। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 87 है, आपने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माहे रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माले गनीमत में से पांचवा हिस्सा अदा करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी इनकी खबर दे दो। तो ईमान आपके ऊपर ये कंडीशंस लाता है। इफ़ यू आर याल्लज़ीना आमनू में से, तो आपको ये काम कम अज़ कम करने पड़ेंगे। आगे चलिए, लिमा, क्यों, वाय, तकुलून, तुम कहते हो, यू सेड। तकुलून का लफ्ज़ कौल से है, बड़ा मारूफ है, उर्दू में भी हम बोलते हैं। कौल कहते हैं जो बात अभी जहन में हो और जुबान तक ना लाई हो, और जब उसको जुबान पे ले आते हैं तो वो कौले साबित हो जाता है। जैसे कुरान की आयत देखिए, व यकुलूना फी अनफुसिहिम लौला युअज्जिबुना अल्लाह, वो कहते हैं अपने दिलों में। बात समझ आ रही है आपको? तो दिल में जो ख्याल उभरता है ना, वो भी कौल होता है। दिल में उठता है और फिर जुबान पे आता है, इसको कौल कहते हैं। नबी सल्लम के बारे में ऐसी बातें कहते थे कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो फिर अल्लाह हमें सजा क्यों नहीं देता। तो दिल में नबी के बारे में जो गलत बातें सोचते थे उसका तذकरा। इसी तरह किसी चीज़ का सिदके दिल से एतबार करना और उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाना, ठीक है। फिर इसी तरह से इसके अंदर इल्हाम का मानी भी आता है, मुख्तलिफ मानी है, बस इसको स्किप कीजिए। इसके मुतरादिफात देखिएगा, सिमिलर वर्ड्स ऑफ कॉल। अरबी में कुरान पाक में कॉल के लिए सिमिलैरिटीज क्या है? नंबर एक, इकरार बोलते हैं, अकरर तुम, काल अकरर तुम व खज तुम अला जालिको मिस्री। वादे अलस का तस्करा है सूरत अल आराफ में, तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुमने इकरार कर लिया और इस पर तुमने एक भारी बोझ ले लिया? और कालो अकरर ना, तो लफ्ज इकरार उर्दू में बोलते हैं ना, इकरार कराना, वो भी है। फिर एतराफ, ए तरफा कहते हैं अरबी में इसको। फा तरफू भी जम्बी हैं फसोकल ये असहाबे सईर, कहाँ पढ़ते हैं? सूरत मुल्क। फिर शहीदा, कालू शहीदना अला अनफुसीना, वो कहेंगे हमने अपने नफ्सों के खिलाफ गवाही दी। ये तीन लफ्ज़ देखिए, इनका फ़र्क देखिए, यानी इकरार करने, कबूल करने, मंजूर करने, मानने और वादा करने, ये सारे मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। जब इकरार का लफ्ज़ आता है तो किसी अहदो पैमान पर कायम होने के लिए, और इसका ताल्लुक आइंदा के लिए। आप कहते हैं ना, मैं इकरार करती हूँ कि आज के बाद ये नहीं करूँगी, तो इकरार में फ्यूचर का ताल्लुक होता है। एतराफ़ होता है ना, तो माजी का ताल्लुक होता है, अपने जुर्म का इकरार करना जो माजी में कर चुके। और शाहिदा कहते हैं कल्बी गवाही को, कल्बी शहादत, यानी ऐसी बात का इकरार जिसका ताल्लुक अपनी ज़ात से हो। आगे देखिए, माँ जो, ला नहीं, तफ अलून तुम करते। तफ अलून के लफ्ज़ में फेल छुपा हुआ है। फेल का जो असल मानी होता है ना, असर अंदाजी, किसी पे इन्फ्लुएंस डालना। आम इससे क्या है कि तासीर उम्दगी के साथ हो या बग़ैर उम्दगी के हो, इल्म से हो या बग़ैर इल्म के हो, इरादे से हो या बग़ैर इरादे के। बहरहाल अरबी जुबान में तफ़लु का लफ्ज़ कहा है, वमा तफ़लु मिन खैरिन यालमहुल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानम व ज़ुल्मा, ठीक है। अब इसके जब आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें देखते हैं, तो अल्लाह ताला का ये फेल है या अमर है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आसमानों और ज़मीन और दूसरी मखलूकात को पैदा करना अल्लाह ताला का फेल है और इसका अमर भी है। अल्लाह ताला अपनी सिफात, अपने फेल और अपने अमर समेत खालिक है, वही बनाने वाला है, और बाकी चीज़ें मखलूक हैं तो अल्लाह गैर मखलूक है। जो चीज़ भी इसके फेल और इसके अमर और इसकी तख्लीक और इसके कुन से बन जाती है ना, वो सब मखलूक है। और मकनून, मकनून क्या, जो कुन से बने। अल्लाह ताला को आपसे क्या चाहिए? कॉल और फेल का तजाद। अरबी जुबान में लफ्ज़ कॉल भी है, फेल भी है, अमल भी है। आपको आगे कहीं बता दूंगी, आज छोड़ दीजिए, खुलासा लीजिए इस आयत का। लिमा तकुलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो नहीं करते। देखिए दो लफ्ज़ हैं, अरबी खोल के देखिए सामने। एक होता है करते क्यों हो जो कहते नहीं, यहाँ क्या है देखिए ज़रा, आपके सामने आयत, क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। फ़र्क है दोनों में कि नहीं? बहुत बड़ा फ़र्क है। अल्लाह सुबहान ताला को आपसे मुझसे जो चाहिए ना वो क्या कि तुम्हारे कॉल और फेल के बीच में डिस्टेंस ना हो। आप कहते हैं ना अल्लाह मबाइद बैनी व बैना हताया, बातें कहो थोड़ी करो ज्यादा, अहद की पासदारी करो। अल्लाह ताला को हमसे वादों और अहदों की और बातों की पासदारी मतलूब है। सिर्फ जुबानी खर्च करना नहायत आसान काम है। इम्तिहान तो तब है जब अल्लाह के रस्ते में धक्के खाए जाएं, ताने तशनी सही जाए, दूसरों के साथ अपनों की भी नाराजगियां मोल ली जाएं और बातें भी बर्दाश्त करना पड़े तो करें। हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं लेकिन वो कॉल है, कैसे फेल है इसको अगली आयत के साथ हम देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दोनों का मजमून एक ही है। यहाँ बात शुरू हुई है, अगली आयत में पूरी होगी। अल्लाह ताला आपको मुझे कॉल ऑफ फेल के तजाद से बचाए, ईमान और इखलास के साथ दीन को गालिब करने वाला बनाए। और असल मतलूब और असल कामयाबी क्या है कि हम अल्लाह के प्यारे बन जाएं। इस आयत को पढ़कर अमल के नुकात क्या हैं? कॉल और फेल में तजाद नहीं करना, सच बोलना, इरादों को पुख्ता रखिए, कच्चे ढिलमिल इरादे मत कीजिए, और वादा खिलाफी नहीं करनी, मुनाफ़कत से बचना। अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा के रखे।